सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। रवीन्द्रनाथ टैगोर जब गीतांजलि लिखते थे तब भी रात 12 बजे तक भी अपनी उस कविता में लीन होकर के एक छोटी सी कैंडील जला के बैठे रहते थे। एक रोज वे अपनी एक छोटी सी कंदील जलाए उसकी रोशनी में कविता लिख रहे थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि अब विश्राम करना चाहिए और वे कंदील बुझा करके जैसे ही विश्राम करने के लिए तत्पर हुए, उन्होंने देखा कि खुली हुई खिड़की से ढेर सारी रोशनी कमरे में आ गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि चंद्रमा की इतनी रोशनी मेरे कमरे में कहां से आई, खिड़की तो पहले भी खुली थी। तब अचानक उन्हें याद आया कि अच्छा, बात ये थी, एक छोटी सी कैंडील जल रही थी, मुझे उसकी रोशनी ही रोशनी मालूम पड़ रही थी, बाहर से चंद्रमा की इतनी रोशनी होने के बाद भी उसका एहसास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने फिर इस बात पे भी एक कविता लिखी कि जीवन भर पता नहीं किन किन चीजों में मैं सुख खोजता रहा और परमात्मा मेरे निकट हमेशा आकर के मुझे कोई संदेश देता रहा, लेकिन मैं उसे भूला रहा। मैं उस सुख को भूल करके छोटे मोटे भौतिक सुखों में ही सच्चा सुख मान करके उलझा रहा, जैसे कैंडील की रोशनी में मैं चंद्रमा की रोशनी जो निरंतर मेरे कमरे में आ रही थी उसको भूला रहा। ऐसे ही मैं अपने इस संसार के प्रपंच में और अपने उस आत्म स्वरूप को भी मैं भूला रहा। मैंने जब ये घटना पढ़ी तो मुझे लगा कि हम सबके साथ भी शायद ऐसे ही है, छोटे छोटे से सुख और उन सुखों में हमारा हर्षित होकर के और वास्तविक सुख को भूले रहना, इसी का नाम तो संसार है और इससे अधिक क्या है। और वे सुख भी कैसे हैं, हमारी किसी एक इच्छा की पूर्ति हो जाने पर हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सुख और शांति में बहुत फर्क है। सुख तो बहुत थोड़ी देर के लिए हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं को हम शांति मान करके बैठ जाते हैं। वास्तव में तो सच्चा सुख वो है जिसके बाद फिर मुझे दुख का एहसास ना हो। ऐसा सुख तो हमें आज तक नहीं मिला जिसके बाद मुझे सुख का एहसास ना हो, दुख का एहसास ना हुआ। वास्तव में शांति वही है जिसके बाद फिर अशांति का कोई उपाय शेष न रह जाए, अशांति का कोई कारण शेष न रह जाए। ऐसी शांति तो हमने अभी तक अनुभव नहीं की। हमने की है, बहुत प्रकार से हमने शांति अनुभव की है, लेकिन वो जो वास्तविक शांति है उसकी खोज हमें हमेशा हमेशा से रही। जब जब भी हम यहाँ आके बैठते हैं तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि हम सबको किसी शांति की खोज है, और हम यहाँ से वहाँ किसी और से पूछते फिरते हैं। मजा हम लोगों के साथ यही है कि वो जो शांति हमारी अपनी निजी है, जो हमारे पास है, जो निरंतर हमारे बहुत समीप होकर के भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, और हम पता नहीं किस जगह उस सुख और शांति को खोजते हैं। जरा सा विचार कर ले, हो सकता है कि विचार करने से और ठीक ठीक शांति का एहसास तो हो ही जाए। उसको फिर प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए जो जब शुरू करेगा उसे तब प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। एक प्रकार की शांति कब प्राप्त होती है? जब हमारे भौतिक सुखों की पूर्ति हो जाती है। भौतिक सुखों की पूर्ति में हम निरंतर लगे हुए हैं, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। शरीर की जो जरूरतें हैं हम उनको पूरा कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सुख और शांति महसूस करते हैं कि हाँ। या कि जैसे शरीर में चोट लग गई है और वो बहुत तकलीफ दे रही है, और शाम को अगर उससे ज्यादा बड़ी चोट शरीर के किसी और जगह पर लग जाए और कोई पूछे कि भैया, उसको नहीं मालूम है कि इनको अभी अभी एक और नई चोट लग गई हाथ में, और पूछे कि भैया वो जो सुबेरे आपको पैर में चोट लग गई थी उसका कैसा है? कहते वो तो उसमें तो शांति है, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है। वो अभी सुबह वाली चोट ठीक नहीं हुई है, लेकिन उससे बड़ी वाली चोट लग जाने से सुबह की चोट में कोई पूछे तो शांति महसूस होती। ऐसी शांति तो हमने कई बार महसूस की है। थोड़ा सा वेदना का प्रतिकार होने पर हमने शांति और सुख महसूस किया है। थोड़ा सा हमारी अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति हो जाने पर भी हमने शांति महसूस की है। यह बहुत बाहरी शांति है। जैसे कि भूख लगी थी और भोजन मिल गया, तो किसी कोई पूछे कि कैसा लग रहा है? अब ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर शाम को तो फिर भूख लगेगी, फिर एक नई तकलीफ शुरू होगी। अभी थोड़ी देर के लिए उस तकलीफ से निजात मिल गई, हम इसको ही शांति मान लेते हैं, इसको ही सुख मान लेते हैं। ऐसी पहली प्रकार की शांति हमने कई कई बार प्राप्त की है और रोज हम प्राप्त करते हैं, और उसी को कई लोग शांति मान लेते हैं, और सुबह से शाम तक या पूरे जीवन उसी को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि हम पूरे जीवन उस पहले ही प्रकार की शांति में तो नहीं उलझे हैं। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं लॉ ऑफ प्लेजेंट। हर आदमी के भीतर ये मैकेनिज्म होती है कि वो अपने भौतिक सुखों की पूर्ति में ही शांति मानता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो भौतिक सुखों की पूर्ति में सच्ची शांति नहीं मानते, पर 99% लोग तो भौतिक सुखों की पूर्ति हो जाने पर ही शांति होती है यही मानते हैं। और आज जितना भौतिक विस्तार है उसको देखते तो लगता यही है कि हम सब ने भौतिक सुखों में ही अल्टीमेट जो बहुत अंतिम शांति है उसको हमने मान लिया है। शायद दूसरे प्रकार की शांति और है, वो भी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे घर में बेटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर देते हैं। जब वो पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है तो कैसा महसूस करते हैं कि चलो ठीक है। और या कि घर में बिटिया है तो बड़ी होने पर उसका विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद विदा करके और जरा आराम से बैठे और कोई आके पूछे कि कैसा है, कहते अब बड़ी शांति। मतलब बेटी के होने से अशांति थी क्या? नहीं, बेटी के होने से अशांति नहीं थी, लेकिन मेरा एक उसके प्रति जो दायित्व था, मैंने वो दायित्व पूरा कर दिया। उस दायित्व के पूरा करने से मुझे एक शांति मिली। ऐसा मेरा पारिवारिक दायित्व पूरा करके मैंने कई बार ऐसी शांति हासिल की है। मैंने अपने शरीर की आवश्यकताएं पूरी करके शांति हासिल की, उसका अनुभव भी मेरा है। और मैंने अपने परिवार के और मैंने अपने समाज के दायित्व को भी कई बार पूरा करके शांति महसूस की है। एक और शांति हमने महसूस की है, लेकिन इसके बाद भी जीवन अशांति बना रहता है। क्या बात है कि मुझे इस प्रकार की शांति प्राप्त होने के बाद भी मेरा जीवन अशांत रहता है। तीसरे प्रकार की शांति ज्यादा दुर्लभ है, वो भी विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। और मैं जिस शांति की बात करना चाहता हूं वो चौथे प्रकार की शांति है, वो अंतिम शांति है। उस सब की खोज हम सबको हमेशा से है, और उसी की खोज करने वाले लोग धार्मिक हो जाते हैं। उनका जीवन ही पूरा बदल जाता है, उनकी दृष्टि ही बदल जाती है, उनका जीवन हम अच्छा जीवन मानते हैं कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिनके जीवन में वास्तविक शांति है। इन तीन शांतियों से बाद की शांति है। अभी तो हम तीसरी शांति को भी प्राप्त शायद हमने बहुत कम अवसर अपने जीवन में प्राप्त किए होंगे जब तीसरे तरह की शांति प्राप्त की हो। दो तरह की शांति तो हमने समझ ली, तीसरी और शांति कौन सी है? चले जा रहे थे रास्ते से, अचानक जो है एक अनजान व्यक्ति और एक्सीडेंट होकर के और नीचे गिर गया। हम देख रहे हैं खड़े खड़े, हम उससे परिचित नहीं हैं, पर भीतर कुछ ऐसा है जो अपरिचित होने के बाद भी उसकी मदद करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। उसी का नाम धर्म है, अपने परिचित व्यक्ति की मदद करना, उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर देना, उसके सुख दुख में शामिल हो जाना। बहुत आसान सी चीज है, वो हमारे दायित्व में शामिल है क्योंकि परिचित है। लेकिन किसी अपरिचित के प्रति भी ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न होना कि इसकी मदद करना भी मेरा दायित्व है, इसकी मदद करना भी मेरा कर्तव्य है, इसी का नाम तो उपकार है। और फिर मैं उसे ले जाता हूं और हॉस्पिटलाइज कर देता हूं, हफ्ते भर तक अपने समय में से कुछ थोड़ा सा समय निकाल के उसको देख आता हूं। बात को मालूम पड़ता है कि इसका अपना कोई नहीं है, बड़ी आत्मीयता जागती है। और जब वो ठीक होकर चलने फिरने लायक हो जाता है तो उस दिन बड़ी खुशी महसूस करते हैं, बड़ा सुख महसूस करते हैं, बड़ी शांति महसूस करते हैं कि चलो अच्छा हो गया इसका भी। ये उपकार करने से प्राप्त होने वाली शांति है, ये भी बहुत थोड़े लोग प्राप्त कर पाते हैं। अपने शरीर की सुविधाओं के लिए पूर्ति करने पर होने वाली शांति, अपने परिचितों, अपने परिवारजनों के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने पर प्राप्त होने वाली शांति, और अनजान इस सारी सृष्टि के प्रति भी मेरा कोई दायित्व है उसका उपकार करके प्राप्त होने वाली शांति, इसके बाद भी कह रहे हैं कि ये शांतियां भी कई बार हमें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो वास्तविक शांति है वो हमें प्राप्त नहीं हुई। बहुत मुश्किल में तो नहीं पड़ गए आप? कि हम तो सोच रहे थे कि इतने में ही मामला पूरा हो जाए, अभी और है कोई शांति? तब तो जरूर उस शांति से हमारा बिल्कुल भी परिचय नहीं है। कर लेंगे अपन, परिचय तो कर ही लेंगे, जानकारी तो ले ही लेंगे, फिर उसको जीवन में प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करें। और हो जाती है, वो कोई कोशिश करे तो आज के जीवन में भी हो सकती है। वैसे शांत लोग भी आज के जीवन में हैं, पर बहुत बहुत थोड़े से, उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। हम और आपका उसमें नंबर नहीं आएगा। तीसरे प्रकार की उपकार करने पर प्राप्त होने वाली शांति के लिए भी मैं हमेशा एक घटना याद करता हूं आपके साथ। उस घटना को मैं फिर से याद कर लेता हूं। वैसे तो कई बार याद आ जाती है, पर ऐसे बैठ करके उन घटनाओं को याद करना भी शांति तो देता ही है कि हाँ सचमुच हमारे जीवन में भी ऐसी शांति हमें प्राप्त हो। एक ऋषि हुए जिनका नाम मैतार्य था, उनके जीवन की घटना है। मैंने इसको उपनिषद में पढ़ा है। कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ता हूं और अच्छी लगती है तो मैं उसे अपनी मान करके ही आगे बढ़ जाता हूं। हम सबको जो चीजें अच्छी लगें वे हमारी अपनी ही मानना चाहिए, और जो चीजें अच्छी नहीं है वे अपने पास होती हुई भी अपनी नहीं मानना चाहिए, ये भी कह रहा हूं मैं। लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा मानना। जो चीजें अच्छी नहीं है और अपनी है तब उनको भी हम अच्छा मान लेते हैं, जो चीजें पराई हैं और अच्छी हैं उनको भी अच्छा नहीं मान पाते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो मेरे पास है वो खराब भी हो तब भी अच्छा है, और जो दूसरे के पास है और अच्छा है तब भी मुझे अच्छा नहीं मालूम पड़ता। ये ऐसे लोग कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ऋषि थे, वो भिक्षा मांगने जा रहे थे। एक स्वर्णकार के यहां पर भिक्षा के लिए ठहर गए। स्वर्णकार अपने काम में लगा हुआ था, मोती के जैसे सोने के दाने बना रहा था। ठीक जैसे मोती होता है ठीक वैसे ही सोने के दाने बना रहा था। उसे किसी राजा की माला बनानी थी। वो अपने काम में लगा हुआ था, ऋषि सामने खड़े हुए हैं। अचानक स्वर्णकार की दृष्टि पहुंच जाती है ऋषि की तरफ, कहता कि पधारो भगवान, बस थोड़ा और रहा काम, फिर आपकी भिक्षा का इंतजाम करता हूं। ऋषि बैठ जाते हैं, स्वर्णकार अपना काम पूरा करके भीतर जाता है और उनके भिक्षा के लिए कुछ वापिस लेकर के लौटता है। उतनी देर में यहां दुकान पर एक घटना घट जाती है। ऋषि चुपचाप बैठे हैं, लेकिन वे जो मोती के दाने जैसे सोने के दाने बनाए थे वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खाने की चीज हो, चना वगैरह हो। और एक पक्षी आकर के और जल्दी 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 उसमें से 10-25 ठो दाने निकल जाता है और उड़ जाता है, और भिक्षा की सामग्री लेकर के वो स्वर्णकार जैसे ऋषि के पास आता है तो ऋषि को तो बाद में देखता है, पहले देखता है कि ठीक रखे कि नहीं रखे। गृहस्थ के जीवन में शांति ऐसी ही प्राप्त हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं, वो आहार दान भी दे रहा है, इसके बावजूद भी उसका मन अपने द्वारा संग्रह की गई वस्तुओं से हट नहीं पाता। उस समय भी उसके ध्यान में पूरा घर रहता है। जंगल में भी अगर गृहस्थ चला जाए तो उसकी गृहस्थी उसके हृदय में हमेशा बनी रहती है, और अगर एक साधु भी किसी के घर में चला जाए तो वो जंगल में ही बैठा महसूस करता है भले ही घर में बैठा। इतना ही फर्क है दृष्टि का, इतना ही फर्क है सुख और शांति को प्राप्त करने के उपायों का। और जैसे उसकी दृष्टि दानों पर जाती है और वे गायब हैं, तो भिक्षा इच्छा तो एक तरफ। महाराज यहां जो सोने के दाने रखे थे कहां गए, देखे आपने? महाराज चुप हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप बताते क्यों नहीं? ठीक है आपने नहीं उठाए होंगे पर किसी और ने उठाए होंगे, किसने उठाए ये तो बता सकते हैं। वो चुप हैं। देखिए आपके चुप रहने से तो संदेह होने लगा है, आप बता दीजिएगा। देखना धीरे धीरे टेंपर लूज हो रहा है, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे संदेह होने लगता है। महाराज बता दीजिएगा। महाराज फिर भी चुप हैं। आप बताते हैं कि नहीं? अब शुरुआत होती है। आप नहीं बताएंगे अगर तो हम आपको बताने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। अभी भी आप सचेत हो जाइए, फिर भी कुछ नहीं बोलते, फिर भी मुस्कुरा ही रहे हैं। पहले वो ही मुस्कुराहट मन को बहुत शीतलता और शांति देती थी, महाराज की मुस्कुराहट। अब महाराज की वो ही मुस्कुराहट बर्छी की तरह छाती में चुभने लगी। आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सोने के दाने चुरा लेने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती महाराज होकर के भी। अब वाणी धीरे धीरे विकृत होना शुरू हो गई। बहुत कठिन है भैया, हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर भी तभी तक श्रद्धा रख पाते हैं जब तक हमारा स्वार्थ सत्ता रहता है, और जिस दिन हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता उस दिन अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र से भी हम शायद इसी भाषा में बात करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपने भीतर टटोल करके देखना इस चीज को। महाराज आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं, बताइए अपना कमंडल। कमंडल में देख लेता हूं, वहां भी नहीं है। पूरी खाना तलाशी लेने के लिए उनके जो भी वस्त्र थे उनमें भी देखता है, बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऋषि पर हाथ तो नहीं उठा सकता था, पर मुंह से जितने भी अपशब्द कहे जा सकते थे वे सारे अपशब्द उनसे कहना शुरू कर देता है। अपने हाथ से अपना नरक बनाने की प्रक्रिया हम स्वयं करते हैं, अपने हाथ से अपनी अशांति के उपाय हम स्वयं करते हैं। कोई भी हमारे लिए शांति का उपाय तो बता सकता है, लेकिन जब तक हम अपने अशांति के उपायों को नहीं छोड़ें तब तक हमें वो वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अशांति का उपाय एक जिंदगी का नहीं है भैया, ये कई कई जिंदगियों के लिए तय कर लिया हमने, ठीक वैसे ही जैसे एक सर्प को मार करके और यशोधर मुनि महाराज के गले में डाल करके शैनिक महाराज ने अपने लिए सात मन नरक निश्चित कर लिया था, ठीक ऐसा ही हम अपने जीवन में जरा सा चूक करके अशांति उत्पन्न कर लेते हैं। वहां सिर्फ क्या बात थी जिससे मैंने अशांति उत्पन्न कर ली? वहां तो कोई बात देखने में नहीं आ रही, मेरे थोड़े से सोने के दाने हैं, जबकि मुझे ये डिसाइड भी नहीं है कि सामने वाले ने उठाए कि किसी और ने उठाए, लेकिन मैंने अपनी अशांति जरा में निर्मित कर ली। एक तो मैं उन सोने के दानों के उठ जाने से तो अशांत था ही, लेकिन मैंने किसी ठीक व्यक्ति पर दोषारोपण करके अपने जीवन के लिए एक नई अशांति उत्पन्न कर ली। जरा विचार करना, ऐसा हम पूरे पूरे जीवन भर करते रहते। जब मन नहीं भरा इतने अपशब्द कहने के बाद भी महाराज को, और वे चुप हैं फिर भी मुस्कुराए चले जा रहे हैं, शांत हैं। उन्होंने प्राप्त कर ली है चौथे प्रकार की शांति, जिस शांति को बाहर की कोई भी अशांति मुश्किल में नहीं डाल सकती। एक चमड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है गीला, उठा करके ऋषि के माथे पर कस करके बांध देता है, हाथ पैर भी उसके बांध देता है, और बाहर जो धूप है कड़ी उसमें उनको पटक देता है। दिख तो ये रहा है कि किसी ऋषि को बांध करके और उसे पटक दिया है, पर अगर गौर से देखें तो हमने अपनी चेतना को ही इस तरह से अपनी कषायों से कस करके नरक में ढकेल दिया है। अगर गौर से देखें तो हमने अपनी ही चेतना को कषायों में कस करके, कषायें हमें हमारी चेतना का बहुत बड़ा घात करती हैं और हमें नरक में भी ढकेल देते हैं। ऐसे ही तो हम अपनी अशांति के उपाय करते हैं। और दोपहर के 12 बजे से शाम 4 बज जाते हैं, ऋषि इसके बावजूद भी शांत भाव से वहीं पड़े हैं, लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं, अब शब्द कह के निकल जा रहे हैं, स्वर्णकार भी वहीं बैठा हुआ है कि देखें बताएगा ये कैसे, नहीं बताएगा, कहीं छिपा दिए होंगे, इसने किसी को दे दिए होंगे, जब यहां से छूटेगा तो ये प्राप्त कर लेगा। सारा संदेह उसी पर है। मुश्किल तो यही है जीवन में कि जहां जहां सच्चाई है वहीं वहीं मुझे संदेह होता है, और जहां जहां झूठ है वहां मैं सहसा विश्वास कर लेता हूं। सारा संसार झूठा है इस पर विश्वास नहीं होता है, धर्म में क्या धरा हुआ है इस पर जल्दी विश्वास हो जाता है। धर्म से मुझे कोई लाभ नहीं मिलता है इस पर मुझे जल्दी विश्वास हो जाता है। अधर्म करने से देखो कितना लाभ मिलता है। अभी मैं दूसरे के 1000 रुपये मैंने झूठ बोल करके पाए हैं, आप कहते हैं कि शांति नहीं मिलती। मैं सच बोल दूं तो अब भी अशांति उत्पन्न हो जाएगी, 1000 तो देनी पड़ेंगे और झूठा साबित हो जाऊंगा, इसलिए रहने दो, सच नहीं बोलता। ऐसे में ये बात जरूर है कि अगर कोई मेरे से डायरेक्ट पूछे कि मैं धर्म को अच्छा मानता हूं कि बुरा, तो कहूंगा कि मैं तो धर्म को अच्छा ही मानता हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपने जो थोड़ी देर पहले झूठ बोला था उसकी जगह सच बोल दो, उसको मैं अच्छा नहीं मानता। देख लो आप, जबकि सच बोलना तो धर्म है। मैं कोई मेरे से पूछे कि धर्म करना अच्छा है, हाँ करना अच्छा, करना अच्छा ही है धर्म करना, तो फिर आप सच बोल दो। नहीं, सच तो नहीं बोलूंगा, अभी तो चुराए 1000 रुपये, सच कैसे बोल, बहुत मुश्किल में डाल दिया ना मैंने आपको, अभी अभी यहीं बैठे बैठे ही। ऐसी मुश्किलें हमें रोज अपने जीवन में खड़ी करनी चाहिए। ये मुश्किलें बहुत अच्छी हैं, इनको हम जिस दिन आसान बना लेंगे उस दिन हम संसार से पार हो जाएंगे। ये मुश्किलें नहीं है, ये आसानियां हैं, लेकिन मुश्किलें नजर आती हैं। सच बोलने में मुश्किल नजर आती है, झूठ बोलने में आसानी नजर आती है। देखो तो झूठ बोलने में ग्लानि महसूस नहीं होती, झूठ प्रकट हो जाए तो ग्लानि महसूस होती है। होना तो ये चाहिए था कि झूठ बोलते समय ग्लानि होनी चाहिए थी, लेकिन झूठ प्रकट हो जाने पर ग्लानि होती है। होना तो ये चाहिए था कि पाप करते समय ग्लानि होनी चाहिए थी, लज्जा आनी चाहिए थी, लेकिन पाप प्रकट होने पर लज्जा आती है। अद्भुत है हमारे मन का गणित। वो स्वर्णकार 4-5 बजे तक इंतजार करता है, फिर भीतर चला जाता है, लेकिन साधु वैसे ही शांत भाव से सब कुछ सहन करते पड़े हैं। उतने में ही जो सामने पेड़ था उस पर वो पक्षी वापस लौट के आता है और दिन भर जो खाता है उसकी बीट विसर्जित करता है, उस बीट के साथ में वो जो खाए 10-25 सोने के दाने थे वो भी उस वृक्ष के नीचे आकर के गिर जाते हैं। स्वर्णकार वापिस आता है उसी वृक्ष के पास, तो वो पड़े हुए हैं महाराज, और उसी के नीचे बीट में वो सोने के दाने पड़े हुए हैं। अब सारी बात समझ में आती है, अब बिल्कुल चेंज हो गया माहौल। अब तो फूट फूट के रो रहा है, चरणों में बिलख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो नरक का दरवाजा खोल रहा था वो अब अपने स्वर्ग के लिए चिंतित है। जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी अशांति का इतना बड़ा उपाय कर लिया है, वो अब किसी शांति की खोज के लिए उन महाराज के चरणों में लौट रहा है कि क्षमा कर दो, मेरा बहुत अपराध हुआ, आपने बोला क्यों नहीं, आपने कहा क्यों नहीं कि वो पक्षी ले गया है, तो आपको काय को मैं कुछ इस तरह से कहता और काय को आपको इतनी तकलीफ भोगना पड़ती थी। और आंगन फांगन सारे बंधन छोड़ता है, शीतोपचार करता है, दुनिया भर का जो हो सकता था उनको सुख पहुंचाने का। लेकिन वे पहले भी दुखी नहीं थे, जो दुखी हो उसको सुख पहुंचा सकते हैं, जो दुखी ही नहीं हुआ। आप किसी का अपमान तब कर सकते हैं जब उसने सम्मान की आकांक्षा की हो, जिसने सम्मान की आकांक्षा नहीं की उसका अपमान आप कर ही नहीं सकते हैं। महाराज ने सम्मान की आकांक्षा नहीं की थी, उनका अपमान ही नहीं हुआ, उन्होंने किसी से बाहर किसी सुख की आकांक्षा ही नहीं की थी, वे दुखी नहीं हुए थे, तो आप ना उन्हें दुखी कर सकते ना सुख पहुंचा सकते हैं। ऐसी शांति वास्तविक शांति है। बहुत मुश्किल में पड़ गया है वो कि क्या करूं, अब तो बोलिएगा कुछ, आपने इतना दुख सहा, कह देते क्या हर्जा हो जाता। तब महाराज ने जो कहा वो उनके चौथे प्रकार की शांति की खबर देता है, और तीसरे प्रकार की शांति का संदेश देता है। उनको प्राप्त हो गई है चौथे प्रकार की शांति, लेकिन वे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तीसरे प्रकार की शांति ही प्राप्त कर लो। वे जवाब देते हैं कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, अगर तुम उसे सोचते हो कि तुमने मुझे दुख दिया, तो वो तो मैं सहन कर सकता हूं। तुम इससे भी अधिक मेरे लिए दुख का उपाय करते तो मैं सहन कर लेता, लेकिन अगर मेरे कहने से कि उस पक्षी ने तुम्हारे दाने खाए हैं, उस पक्षी को अगर तुम जरा भी कुछ करते तो मैं उस दुख को सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने नहीं कहा। मुझे और भी कोई दुख तुम देते तो मैं सहन कर लेता, लेकिन पक्षी को अगर तुम कुछ दुख देते तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये तीसरे प्रकार की शांति पाने वाले लोग हैं, जो दूसरे के उपकार में अपना सुख मानते हैं, जो दूसरे के ऊपर उपकार करके शांति महसूस करते हैं। ये लोग भी चौथे प्रकार की शांति प्राप्त करके फिर ये तीसरे प्रकार की शांति का संदेश देते हैं, उपकार से को भी कष्ट में डाल करके दूसरे के सुख और शांति की कोशिश करना, उनको ही प्राप्त होती है ये भी शांति, जो अपने अहंकार और ममकार दोनों को समाप्त कर चुकते हैं। चौथे प्रकार की शांति अहंकार ममकार दोनों को, आई एंड माइन, मैं और मेरा, सारा संसार इसी पे खड़ा हुआ है, यही अशांति का उपाय है और कोई उपाय नहीं है अशांति का। मैंने जो आपसे कहा कि अशांति का उपाय हम अपने साथ लेके फिरते हैं, मेरा मैं और उस मैं का मैनिफेस्टेशन, उस मैं का फैलाव। जितनी सामग्री मेरे पास होगी, जितना मेरेपन का एहसास मुझे होगा, उतना ही मेरा बड़ा हो जाएगा मैं। मेरे पास एक कार है तो मैं बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? देखो, मेरे पास एक बंगला है तो मैं बड़ा हो गया कि नहीं? ये जो मेरा बंगला और मेरी कार है, वो मेरे मैं को बड़ा करने के लिए है और किसी के लिए नहीं। मैं इसीलिए इतनी सामग्री जोड़ के रखता हूं ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। मेरे अपने मैं को बड़ा करने के लिए मैं अपने आसपास मेरेपन को बढ़ाता चला जाता हूं। इसी का नाम संसार, इसी का नाम अशांति है, लेकिन सहसा समझ में नहीं आता। और इस मैं और मेरेपन को तोड़ने के लिए ही सारे उपाय करे गए हैं धर्म में। शुरुआत वहीं से की गई है कि जाकर के सबसे पहले इस अहंकार को तोड़ने के लिए ओम जय 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 कहते हुए झुक करके प्रवेश करना मंदिर में, यहां से शुरू करते हैं। कि तुम अकड़े अकड़े फिरते हो पूरी दुनिया में, एक जगह है जहां की थोड़ा सा सुबह से जाकर के माथा झुका के आना, थोड़ा तो अहंकार कम होगा, और हाथ में ले जाना कुछ ना कुछ, और संभव हो तो वहां पर अर्पित कर देना कि यही है मेरा, जिसके पीछे मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं, इसको भी आपके चरणों में छोड़ता हूं। इससे बड़ा कोई उपाय हो सकता है मैं और मेरेपन को तोड़ने का? ये कितना आसान उपाय अपन को मिला हुआ है। एक और घटना आपको सुनाऊं, आज तो इतवार है, अगर थोड़ी देर भी कर दूं तो आकुलता तो नहीं होगी। मैं अगर अशांति होने लगे तो बता दीजिएगा मुझे। शांति के उपाय सुनते समय भी अशांति होने लगे तो क्या फायदा? मैं और मेरेपन को हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं, छोटी छोटी चीजों में अहंकार कर लेते हैं। इतनी बढ़िया सी बात सुनकर के हो सकता है कि हम जहां जब बाहर निकले और अचानक किसी के पैर पे हमारा पैर पड़ जाए तो कैसे देखते हैं हम? ऐसे क्या देख के नहीं चलते? पता नहीं क्या हो गया, पैर पर पैर नहीं रखा, उस समय तो ऐसा लगता जैसे सिर पर पैर रख दिया। मुझे क्या समझते हो तुम? सवाल ये है, मन में यह भाव आता है कि आपने मेरे पैर पर पैर रखा तो मुझे समझते क्या हो, मुझे आपने धक्का दे दिया मुझे समझते क्या हो आप। असल में मैं अपने को सब कुछ समझता हूं इसलिए दिक्कत है, आप मुझे कुछ नहीं समझते। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं, इसमें तो फिर भी गुंजाइश रहती है। आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। यहां से शुरुआत होती मेरे अहंकार की, छोटी छोटी चीजों में। और इस अहंकार और ममकार को जो लोग तोड़ देते हैं, जितना कम कर देते हैं, वे लोग ही सच्ची शांति पा लेते हैं। एक बहुत छोटी घटना की जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो छोटी तो नहीं है पर समय उसमें थोड़ा ही लगेगा, पर घटना बहुत बड़ी है। क्या हुआ था कि एक राज्य में राजा नहीं रहे थे, रानी साहबा को किसी उत्तराधिकारी की खोज थी। हो सकता है किसी ने आपको यह कहानी सुनाई है, लेकिन अपन फिर से उस कहानी को एक बार रिवाइज करें। सुनने का मजा ही अलग होता है और कहने का तो फिर अलग ही है, और जिस भाव दशा में सुनी जाए उस भाव दशा का भी बिल्कुल अलग ही महत्व है। रानी साहबा ने सब तरफ खबर भेज दी कि हम राजा का चुनाव करने जा रहे हैं, जो लोग इच्छुक हैं वो आ जाएं। तीन नाम आए, बामुश्किल तीन नाम आए। आज अगर कोई एकाध सीट खाली हो और विज्ञापन दिया जाए तो कितने नाम आएंगे? 3 लाख तो आ ही जाएंगे कम से कम। उस कुर्सी के योग मैं हूं या नहीं हूं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, यही तो मेरा अहंकार है। मैं उस कुर्सी के लायक हूं कि नहीं हूं, मैं इसका विचार क्यों करूं? वो कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। आई एम एबल टू अटेन दैट, मैं योग हूं उसके पाने का, हकदार हूं। ऐसा मन में आ जाता है। उस समय 3 ही लोग, वो भी बामुश्किल, बुलाया जाए उन तीनों को, उनमें से भी किसी एक को ही चुनना है। तीनों को 100-100 रुपए दे दिए गए, जाओ एक छोटी सी परीक्षा दे के आओ, तुम्हें जो कमरे दिए गए हैं उन कमरों को इन 100 रुपए से भरना है। बहुत मुश्किल में पड़े, तीनों राजकुमार थे। पहले वाले ने सोचा कि 100 रुपए में क्या होगा, इतना बड़ा कमरा और 100 रुपए में। उसने अपने 100 रुपए लगा दिए, आप समझ गए, लगा दिए उसने कि शायद 100 के 1000 हो जाए और 1000 में कुछ काम सट जाए। लेकिन 100 के 1000 होना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हुए, बल्कि वे 100 के 100 और चले गए। कमरा खाली रह गया, कमरा ही क्या खाली रह गया, ऐसे लोगों की पूरी जिंदगी खाली चली जाती है। दूसरे ने सोचा 100 रुपए में क्या आ सकता है, विचार करता रहा, 12 बजे तक सुबह के विचार चलता रहा उसका। उसने कहा रे मैं तो भूल ही गया था, बहुत आसानी से आ सकती कमरे भरने लायक चीज तो 100 रुपए में। नगर पालिका वालों को कहना भर पड़ेगा, जितना भी वहां बाहर फिकवाते हो वो सब इसमें भरवा देना, 100 रुपए हमसे ले लेना, ढुलाई के ही लगेगा पैसा, बाकी तो खरीदने वरीदने का पैसा तो लगेगा ही नहीं, कचरा का क्या पैसा। उसने कहा भर जाएगा, पूरा कमरा भर गया। लेकिन उस कमरे में अब खुद नहीं बैठ सकते, यहां तक कि उस कमरे के आसपास भी नहीं बैठ सकते, बदबू इतनी आती है। जिंदगी के साथ भी यही हुआ कि जो लेके आए थे यहां आकर के उसको भी दांव पे लगा दिया और शायद लौटते वक्त खाली हाथ लौटने की पीड़ा लेके लौटेंगे। हम सब में से अधिकांश लोग जो पुण्य अर्जित करके लाते हैं उसको यहां भुना करके पाप में कन्वर्ट करके वो एक बोझ और लेके लौट जाते हैं। कुछ लोग अपने उस पुण्य को विषय कषाय में लगा करके बदबूदार बना देते हैं, सारा जीवन उसी विषय कषाय की सामग्री से भर जाता है। स्वयं को तो गंध आने लगती है, आसपास का वातावरण भी गंदा होना शुरू हो जाता है, पूरा जीवन उसी विषय कषाय से भरा हुआ है। देख लो आप, तीसरे राजकुमार ने भी अपना कमरा भरा है और रानी साहब तीनों को देखने के लिए आने वाली है शाम के समय। पहले वाले को उदास बैठे हुए देख के समझ गई कि खाली हाथ है, गंवा दिए 100 रुपए। दूसरे वाले ने कचरा इकट्ठा करके रखा है 100 रुपए से, उदास हो गई वो भी कि कोई अवसर नहीं है, शायद राजा की गद्दी खाली रहेगी। तीसरे के पास पहुंचती हैं तो वहां भी कमरे में अंधेरा ही मचा हुआ है, राजकुमार लेकिन उनका इंतजार करता खड़ा हुआ है। आओ रानी साहबा, आपने कमरा भरने के लिए कहा था ना? हाँ, क्या किया तुमने? बस आइए, देर क्या है उसमें, अभी भरे देता हूं। और जैसे ही रानी साहबा कमरे में प्रवेश करती हैं, वो सैकड़ों दीप लेके आया था, सबको जला देता है, अगरबत्ती जला देता है, सारे कमरे में रोशनी और सुगंध भर जाती है। रानी साहबा कहीं भी घूम के देखाइएगा, कोई भी कोना सुगंध और रोशनी से खाली नहीं है। आपने कमरा भरने को कहा था। रानी साहबा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मैं अपने इस राज्य का राजा बनाती हूं। वो रानी साहबा के पैर छू लेता है, प्रणाम करके बाहर निकलने लगता है। वे उसे रोकती हैं, कहां जाते हो? बोले बस हो गया मेरा काम, मैं क्या करूंगा राजा बनकर, आपने तो इतना बड़ा उपाय बता दिया है कि इस राजा बनने पर मुझे कोई शांति नहीं मिलने वाली, मुझे समझ में आ गया है। पूरी बात बताओ, क्या बात हुई? बोले रानी साहबा, आपने ये नहीं पूछा कि मैंने ये कमरा कैसे भरा और कहां से ये शिक्षा प्राप्त की? आप मुझसे पूछें तो मैं यही बताऊंगा कि आप ही ने मुझे ये उपाय बताया। 100 रुपए देने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि इन 100 रुपए का करूंगा क्या, क्या उपाय है। मैं आपके पीछे पीछे चला गया था, आप मंदिर गई थी दर्शन करने और आपने धूप खेई थी और दीप जलाया था, मेरे दिमाग में उसी समय आ गया कि यही मुझे जब आप लौटेंगी तो शाम को करना है। पर सारे दिन सोचता रहा कि जिस ईश्वर के चरणों में दीप और धूप जला करके उत्ते से बात से मुझे एक राजा बनने का अवसर मिल गया, और अगर मैं उन जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दूं तब तो फिर मैं महाराजा क्या, मैं तो बहुत बड़ा बन जाऊं। इसलिए अब मैं यहां रुक नहीं सकता, आपका सिंहासन फिर भी खाली रहा आएगा क्योंकि 2 राजकुमार तो आपको नहीं मिले, मैं तीसरा शायद उसमें पास भी हो गया हूं, लेकिन अब यहां रुक नहीं सकूंगा, मैं जाऊंगा और जो आपने मुझे शांति का उपाय बताया है वो ही शांति का उपाय उस मंदिर में जाके प्राप्त करूंगा। चौथे प्रकार की शांति पाने वाले लोग उस मैं और ममकार को हटाने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वे ही चौथे प्रकार की शांति पा पाते हैं। भैया जैसे बने तैसे, 2 प्रकार की शांति पाने में तो जीवन बिता दिया, जैसे बने तैसे तीसरे और चौथे प्रकार की शांति पाने के लिए भी कुछ थोड़ा सा अपने जीवन में हम लोग प्रयास करें, हम सबके जीवन में ऐसी शांति आए, इसके लिए आज मैं आपके साथ बैठकर नमोकार करना चाहता हूँ। आप भी मन बनाएं, हम सब का मन इतना निर्मल हो कि हम अपने अहंकार और ममकार को आने वाले दिनों में कमती करें, दूसरे का उपकार करने के लिए मन बनाएं। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं।
नमो सिद्धार्थम्। ओम नमो आर्यानम्। ओम नमो वज्रायानम्। नमो लोये सर्वसाहूनम्। चित्तायमङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पन्नतोधम्मङ्गलम् चत्तायि लोकुत्तमा अरिहन्ता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पन्नतोधम्मलोकुत्तमो चत्तायि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि।
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।